उनके आश्रम में जा रहा था कपिल देव जी के। यहो ये कौन है? पर झट उनके चरणों में गिर गया पालके से उतर कर। बोला जी महात्मन आप कौन हैं? आपका ही वही कपिल देव तो नहीं है, या सनत कुमार इत्यादि तो नहीं है, अथवा अंगिरा और नारद तो नहीं है? आप कृपा करके अपना परिचय दें और मेरे इन संदेहों को जो आपने अभी कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया, बुद्धि में, मैं नहीं के लिए जा रहा था, कृपया आप विस्तार से इस ज्ञान को हमको बतलाएं। उन्होंने कहा जी देखो मैं तुम्हारा पूर्वज भरत महाराज था। भरत महाराज का नाम सुनते ही एकदम आश्चर्य, वो भरत महाराज हमारे पूर्वज ये है? ये उनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करने लग गया। बोला महात्मन आपकी बातों को तो मैं नहीं समझ पाया, समझो इस प्रकार से, कब से तुम राजा हुआ? मरने के बाद भी राजा रहेगा? आत्मा न तो दुबला है, न पतला है, न ऊंचा है, न लंबा है, न काला है, न गोरा है, ये तो भगवान का नित्य सेवक और भगवान का अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि है, नित्य सनातन है, न कभी जन्मने और मरने वाला है। जो इस तत्व को जानता है वो माया से मुक्त होकर के भगवान के चरण में पहुंच जाता है। जीव कभी भी भगवान नहीं होता, भगवान का दास बनता है। तो वो कहने लगे जीव भगवान का नित्य सेवक है, इस जगत में आकर के शरीर को पा करके शरीर में आत्मबुद्धि करता है जब मैं और मेरा, सब समय मैं गोरा हूँ, मैं गोरी हूँ, सुंदरी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, और सुख दुख का कर्ता मैं हूँ, ऐसा समझने लगता है और ऐसा समझ करके संसार में बद्ध हो जाता है। ये संसार की रीति है। हम लोग इन कथाओं को सुन करके समझे हम इन गुणों से प्रकृति से अतीत हैं, हम शुद्ध जीवात्मा हैं, भगवान का सेवा करने के लिए इस जगत में आए थे भक्ति के लिए, किंतु ओट न लगे कपास, संसारी कार्यों में फंस करके आसक्त मत हो, जीवन निर्वाह के लिए जत किंचित जो कुछ है करो, किंतु अवशेष समय भगवान का भजन करने में लगाओ, तब तो ये संसार से मुक्ति होगी, नहीं तो जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे ही महात्मा की, भरत जी की बहुत सी कथाएं हैं, प्रसंग वस्तु हम उनको सुनाएंगे। आज रात बहुत कुछ अधिक हो गई, आपको भी जाना है, इसलिए संक्षेप में मैंने इसका वर्णन किया। इन कथाओं का आश्रय ग्रहण करके समझ करके भगवान का भजन करो, कुछ मत करो, केवल क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सन्यासी भी इसमें काम में पिछड़ जाते हैं, उन लोगों को भी उचित है कि श्रद्धा पूर्वक पुनः पुनः श्रवण करने पर भी इसको सुने। एक बात सुनना हो गया, अब सुनने की जरूरत नहीं है, ये भक्तन लोग नहीं कहते। तो एक दिन खा लो, फिर रोज रोज खाने की कोई जरूरत नहीं है, भोजन मत खाओ, एक दिन तो खा ही लिया, सांस लेते हो एक बार, फिर दूसरी बार नहीं लेने की जरूरत है, एक बार पानी पिया फिर दूसरी बार पानी पीने की जरूरत नहीं है। पुनः पुनः भक्ति के साधनों का अभ्यास करना ही भक्ति है। इसलिए भगवत कथा होने पर, और वो भी यदि वैष्णव के मुख से होती है, तो उसको सुनने से कल्याण होता है और भक्ति की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। संस्कार के बिना भक्ति नहीं होता, पूर्व जन्म का संस्कार भी होना चाहिए और इस जन्म का भी संस्कार होना चाहिए, दोनों को मिला करके भक्ति होता है। पूर्व जन्म में भक्ति का कोई संस्कार ही नहीं है, कोई सुकृति नहीं किया, तुलसी की सेवा नहीं की, यमुना की सेवा नहीं की, गिरिराज जी की सेवा नहीं की, किसी भक्त की सेवा नहीं की, हरि कथा कुछ नहीं सुना, ऐसे लोगों को भक्ति में रुचि नहीं होगी। उनको भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान में, कर्म में, तपस्या में, व्रत करने में, दान देने में, उपवास रहने में, जल में नदी को तीर्थ मान करके उसमें स्नान करने की रुचि रहेगी, एकांतिक भक्ति में उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए किसी प्रकार से यदि हमें यह सुयोग प्राप्त हो रहा है हम समझेंगे हमारे पूर्व जन्म की कुछ भक्ति की का संस्कार था और इस जन्म में वो संस्कार पुष्ट होकर के तब शुद्ध भक्ति में वो लगेगा, अन्यथा नहीं लग सकता। थोड़ी सी सुकृति से नहीं होगा। देखो प्रहलाद महाराज जी को, वो उसी जन्म का यह फल नहीं है। पहले जन्म में वो ब्राह्मण के बच्चे थे, बड़े सदाचारी थे, बड़े तत्वज्ञान को भी जानते थे, सदाचार संपन्न थे, किंतु इन सब गुणों ने भी उनको माया से, माया में आसक्त करने से रोक नहीं सका, उनकी रक्षा नहीं कर सके। माया बड़ी प्रबल होती है। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और एक बेस्या के चंगुल में पड़ गए। बेस्या बड़ी रूपवती और किशोरी थी, बड़ा सुंदर गाना गाती थी, अपने हाव भाव से उनको एकदम वशीभूत कर लिया और उनका धन और सब कुछ ले लिया, उनका परमार्थ सब समाप्त एक तरह से कर दिया। वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर उस दिशा में इतने आसक्त हुए, उनके बिना उनसे रहा नहीं जाए। जब बेस्या ने देखा उनके पास में अब कोई धन नहीं है, जब वो आए तो उनको झिड़क दिया, मेरे पास किस लिए आते हो जब पैसा नहीं। झिड़कने के साथ साथ में उनके हृदय में बाण जैसा लगा, बड़े व्यथित होकर के, दुखित होकर के उसके घर से निकल गए। उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, सोचा जे कैसे प्राण को छोड़ दूं, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, आज उसने हमको ऐसा ठक्कर मारा, मैं इस संसार में हम नहीं रहना चाहता, बस प्राण प्रत्याग कर दूंगा। चलते चलते शाम हो गई, जाड़े का दिन, इतने में बरसा, बादल उमड़ घुमड़ कर आए, जोरों से बरसा होने लगी। थोड़ी देर में घना अंधकार हो गया, वो जंगल में जाकर उपस्थित थे। बाघ भालू भी गर्जन करने लगे, डर के मारे प्राण सूख गए। बहुत ठंड हवा लगने लगी, अपने को बचाने के लिए और प्राण का मोह नहीं छोड़ सके और बचाने के लिए वहां पर कोई आश्रय ढूंढने लगे। उनको सामने में एक टूटा फूटा मंदिर मिला, उस मंदिर में वो घुस गए और उसके एक कोने में बिना खाए पिए बस उसी की चिंता, हाय हाय करते 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 सारी रात बीत गई। बेस्या भी उनको घर से निकाल करके बड़ी दुखी हुई और उसने सोचा कि हमने हाय हाय ये क्या किया, उसका सर्वस्व मैंने ग्रहण कर लिया और उसको इस प्रकार से अपमानित होकर के घर से निकाल दिया। उसको चैन नहीं मिला और वो भी उनका पीछा करते 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 उसी प्रकार से उसी वन में और रात में उसी टूटे फूटे मंदिर के एक कोने में जाकर के रात भर से शक्ति रही। एक कोने में ये ब्राह्मण बालक और दूसरे में कोने में वो रात भर तड़पते रहे। सवेरा हुआ, देखा जी ये तो नृसिंह जी का मंदिर है। भक्ति भाव से प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया, वो बेस्या भी ठाकुर जी को प्रणाम किया और रोती हुई इनके चरणों में वो गिर गई। आप मुझे क्षमा करें, बाई चांस उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था, हाथों पापी और उसकी स्त्री भी पापी हो गई बेस्या, व्यभिचार में लग्न है। तभी उस दिन नृसिंह चतुर्दशी व्रत होने से न खाया न पिया न सोया, रात का जागरण भी हो गया, खाना पीना उपवास हो गया और ठाकुर जी के मंदिर में ये सब बातें। इसलिए भक्ति का एक ऐसा संस्कार जन्म गया कि प्रहलाद महाराज जी और वो बेस्या प्राण छोड़ने के बाद में भगवान की व्यवस्था के अनुसार में सूचिनांग श्रीमातांग गेहे जो गोभ्रस्त जायते, वो जो वहां पर गए थे, ये भक्ति का प्रारंभ हुआ। रात में जागरण करना, नृसिंह चतुर्वशी का उपवास करना, नहीं जानते हुए भी इसका फल ऐसा हुआ कि अपनी माता के गर्भ में दूसरे जन्म में इतना 60,000 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और नारद ऋषि उनको उपदेश देते रहे, वेद वेदांत उपनिषद श्रीमद भागवत इत्यादि के उपदेशों को उनको बतलाते रहे 60,000 वर्ष। अजय 60,000 वर्ष कैसे, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयुधा के गर्भ में वो आए और 60,000 वर्ष तक इसलिए रहे, वो 60,000 वर्ष के लिए तपस्या के लिए गया था और उनकी पत्नी कयुधु ने नारद जी की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया और मुंह मांगा, बर मांग लिया। नारद जी ने कहा जी बर मांगो, तू क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा हमको इच्छा के अनुरूप में हमारा बेटा पैदा हो, जब कभी अपने समय से ना हो, मैं जब चाहूं तब बेटा पैदा हो। मैंने कहा यो मस्तु, ऐसा ही होगा। 60,000 उनके आश्रम में रह करके घर का काम करती, आश्रम को लिप लोट देती, तुलसी का चपुत्रा लिप लोट देती, स्नान इत्यादि की व्यवस्था कर देती और इस तरह से ये उसको सवेरे शाम जब समय मिलता उसको भक्ति का उपदेश देते, वेद का उपनिषद का ज्ञान संपूर्ण उसको 60,000 वर्ष में सुना। हम तभी 1 घंटे 8 घंटे हम लोग सुना रहे हैं और वो निविष्ट होकर के सुनाते, मैया सुनती किंतु भूल जाती, अपने हृदय में नहीं रख पाती। क्यों? उन्होंने उसकी मैया के उद्देश्य से नहीं कहा, बच्चे को उद्देश्य करके कहा, इसलिए वो बच्चा में ऐसा संस्कार जन्मा कि जन्म के साथ ही साथ में वो उसमें भक्ति ज्ञान विराग सब कुछ उसके अंदर में उपस्थित और इतना आत्मज्ञानी हुआ और भगवान का शरणागत भक्त जन्म के साथ ही साथ हुआ, निर्भय बना रहा। 5 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से निर्भय और आत्मज्ञान और भक्ति योग से परिपूर्ण हो गया। जब वो 5 वर्ष का हुआ, आप लोगों ने अभी सुना कि अभी बाकी है, ये सुना दिया है, इन्होंने सुना दिया होगा, तभी मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। 5 वर्ष की उम्र में उसके पिताजी ने पूछा कि तुमने स्कूल में सबसे अच्छा क्या पढ़ाई की, हमें 2-4 शब्द उसको बतलाओ। तो उन्होंने यही बतलाया, जो लोग इस संसार में आसक्ति में मग्न हैं, उन सबको छोड़ करके वैष्णव के अनुगत्य में भगवान का भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य समझता हूं, यही समस्त शास्त्रों का सार तात्पर्य है। अपने जीवन को भोगों में, विषय भोगों में बिताना उचित नहीं, उसको त्याग करके बचपन में से ही किसी शुद्ध भक्त का, गुरु का आश्रय लेकर के भगवान का एकांतिक रूप में भजन करना ही जीवों के लिए सर्वथा उपयुक्त कर्तव्य है, इससे बढ़कर के कोई कर्तव्य नहीं। सुन करके वो तिल मिला गया, तिल मिलाने की ही बात थी, ये उसी के लिए कहा गया था, हिरण्यकश्यपु के लिए। उसमें कहा गया ये संसार एक कूप है जिसमें कि सूखा हुआ पानी, पानी नहीं, उसमें सर्प निवास करते हैं। संसार की उपमा में ये बतलाया, ये संसार क्या है, सूखा हुआ पानी रहित एक कुआं है, उसके घाट उखड़ गए हैं, उस कुएं में अंदर में सांप बिच्छू इत्यादि निवास करते हैं, पानी तो है ही नहीं। एक पथिक जा रहा था किसी जंगल में, उसने देखा जो सामने से बाघ गर्राता हुआ आया, उस पर टूट पड़ा, बचने का कोई उपाय नहीं, लेकर के उसी कुएं में जिसमें पानी नहीं है और उसके ऊपर से घाट और पेड़ पौधे कुछ उग आए हैं जिसमें कुआं नहीं दिखाई देता, झट उसकी 2 डालों को पकड़ करके और उसी कुएं के अंदर में झूल गया। पीपल का वह छोटा सा पेड़ था, उसकी 2 टहने थी, उन दोनों को पकड़ लिया, कुएं में झूल गया। थोड़ी देर के बाद में देखा कितना देर तक पकड़ करके रहूंगा, नीचे जरा देखूं तो नीचे देखा जो सांप काले काले फस फस ऐसा कर रहे थे, जो नीचे जाएगा उसे काटे। ऊपर में बाघ गर्जन कर रहा है और अपने पंजों से थपेड़ा मार रहा, अभी आएगा अभी मार रहा। देख करके भयभीत होगा, कांप गया। थोड़ी देर के बाद में देखा दो चूहे कुएं से निकलकर, कुएं के गड्ढे से निकलकर और उसे काटने लगे जिसको वो पकड़ करके झूल रहा था। एक काला चूहा था और एक सफेद चूहा। यदि वो काट देते हैं थोड़ी देर में तो अपने आप गिर जाएगा, यदि पकड़े रहे तो भी। अब मृत्यु अनिवार्य है चारों तरफ से। इतने में उसे दिखाई पड़ा जिस जहां वो उसका मुख है उसके सामने ही ऊपर में मधुमक्खियों का छत्ता है एक डाल में, और वहां से मधु टप टप कर टपक रही। अब तो मर ही रहे हैं, मरना तो अनिवार्य है, जरा देखूं तो। बस जी बढ़ाया और उसके जी पर दो एक बूंद पड़ी। क्या मधुर, भूल गया सब, ऊपर में नीचे में मृत्यु, और पुनः पुनः अब उसी मधु को चाटने की चेष्टा में लग रहा जीभ को बढ़ाकर। यही दशा हमारी है, यह संसार कूप है। हम जीव दो डालियों को पकड़ रखें, कर्म एक पेड़ है, उसमें पाप और पुण्य दो डाल है। डाल को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा, एक दिन और एक रात, एक एक मिनट में काटते हुए मन चलते बीतते हुए चले जाए। एक न एक दिन ये दिन समाप्त हो जाएंगे, आयु पूरी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। ये चूहों का काटना है। पाप पुण्य से बना हुआ ये वृक्ष है तो ये दोनों चूहे काट रहे हैं। मधु का बूंद इसमें क्या है? संसार में जब कामों से फुर्सत मिल करके जब घर आते हैं तो पत्नी के मधुर बात बातचीत, बच्चों का प्रेम पूर्वक गोदी में बैठ करके पिताजी पिताजी, या पत्नी से जब पति मिलता है तो मधुर मधुर दो बातें करता है, पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, और यदि नहीं करता तो पति का मन खराब हो जाता, स्त्री का मन खराब हो जाता है। परस्पर परस्पर जितना भी कष्ट दिन भर किया और बच्चे प्रेम से आकर के गोदी में बैठ गई है, सब दूर हो जाता। ये आसक्ति जो है परस्पर का, ये आसक्ति रूप जो स्नेह, यही बूंद है। ये संसार के लोग बस इन्हीं को लेकर के चलते हैं, और कुछ दिन में बूढ़े हो जाने के बाद में तब क्या होता है? वही बच्चे जो थे अब बड़े हो गए, पंख उग गए, विवाह शादी हो गया, उड़ करके दूसरे घोंसले में चले गए, जैसे के तैसे, जैसे बचपन में थे अकेले हो जाते हैं। स्त्री भी मर गई या पुरुष भी मर गया, बस अकेले शरीर असहाय हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, पानी का ग्लास भी नहीं उठाते। और बेटे रहते हैं या बहू ताना मारती है, मर क्यों नहीं जाते, घर में क्यों आते हैं? उस समय जीना बड़ा भारी दुष्कर हो जाता। अभी तो नहीं, उम्र ढलने पर ऐसी पुरुष और स्त्री सभी लोग इसका अनुभव करेंगे। तो उसमें मधु केवल है संतान और परस्पर पति और पत्नी का स्नेह, ये भी कट करके गिर जाने वाला है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, कर्तव्य पुरुष इन बातों को जान करके, इनको छोड़कर, इनमें आसक्ति को तोड़ करके, भले ही संसार में आसक्ति को छोड़ करके परस्पर भगवान का भजन करते हैं, यही बुद्धिमानी का कर्तव्य है। यदि भगवान की भक्ति होगी या साधन कोई कर रहा है, इसका कुछ लक्षण है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, साधन हरिनाम कर रहे हैं, तिलक माला ले रहे हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, तो ये भक्ति हमारी आरंभ हो गई ना? नहीं हुई, अभी तो शरणागति भी नहीं आई। यदि वो भगवान का शरणागत होने पर, भक्ति आरंभ करने पर भी निर्भय नहीं होता, भक्ति के बाधाओं से बिल्कुल निर्भय नहीं हो जाता कि भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसा पक्का विश्वास नहीं हो जाए तब तक भक्ति अभी आरंभ नहीं हुई, अभी तो शरणागति भी नहीं हुई, आना जाना एक तरह से अभी सुकृति कुछ है, इसलिए ऐसा विश्वास पक्का हो जाना चाहिए। कृष्ण हमारी रक्षा किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, प्रहलाद महाराज की रक्षा की, उसके पिता कितने बलवान थे, भूमंडल में क्या 7-14 लोगों में उसके बराबर बराबरी का कोई वीर नहीं था, देवता लोग उनके घरों में पानी बाहर देते भरते झाड़ू लगाते, पवन देव झाड़ू लगाता था, वरुण उनके घर में पानी भरते थे, इंद्र को जैसा आदेश देता वैसा करते, ऐसा आदमी प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए चेष्टा करते हैं, और प्रहलाद महाराज जी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु हमको किस लिए पिताजी मार रहे हैं, मैंने क्या दोष किया, मेरा कसूर क्या, ये तो बात दूर है, भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रभु हमारी रक्षा करें। यदि ऐसा हम निर्भीक नहीं होंगे तो समाज के उस पातों से हम भगवान का भजन छोड़ देंगे। आपने कहा जे यहाँ पर हरि कथा सुन करके कोई गया घर में, पत्नी पति से बोली आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगी, लहसुन नहीं खाऊंगी, आज से मैं मांस मछली और सफेद आलू नहीं खाऊंगी, सफेद आलू माने अंडे नहीं लूंगी, अच्छा ये क्या, अभी मार करके तुम्हारी तंगड़ी तोड़ दूंगा, नहीं खाएगी, तो अच्छा अच्छा जैसा कहते हैं, मैं भगवान का नाम हमारे घर में रहेगी तो न करना, कहें जैसे तब तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, इसलिए नहीं भजन करेंगे, तब तो वो ये सब कुछ सुना गया खत्म, निर्भय होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। यदि पिता गुरु देश के राष्ट्र के सभी लोग मिलकर के भी हमारे भजन को नष्ट करने के लिए चेष्टा करेंगे, मैं भजन करना नहीं छोड़ूंगा, प्राण भी चला जाए तो भी, खंड खंड यदि कोई गोटी गोटी उड़ा दे, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेगा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो भगवान का भजन क्या हुआ, भगवान का आश्रय लेकर के भी ऐसा यदि नहीं कर सके तो भगवान का भजन करेगा। तुलसीदास जी को मीराबाई ने संकट की अवस्था में, जब उसके पति विरोधी हो गए, उसकी सास विरोधी हो गई, उसकी ननद विरोधी हो गई, राज्य वाले सभी लोग विरोधी हो गए, और एक तरफ में अकेली खड़ी मीरा, पति भी उसको जान से मारने की चेष्टा की और अकेले थी, उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, महात्मा जी मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, सारा संसार सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो रही हैं, मैं क्या करूं। तुलसीदास ने उसी समय में उनको पत्र दिया, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिय कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजव कंत पर्ज बनितन भय जग मंगलकारी। जिनके राम और सीता प्रिय नहीं है, जिनके प्रिय राधा कृष्ण नहीं है, वो भले ही अपना पति हो, भले ही अपना गुरु हो, भले ही अपना बड़ा भाई हो, वो हमारा बंधु हो, कोई भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, उसको परम विष के समान समझकर और उसका पद त्याग कर दो, उसका मंगल होगा, वो पति पति नहीं, वो भाई भाई नहीं, उधर में क्या कर रहा है भाई, इधर सुनो सब, वो भाई भाई नहीं, वो पति पति नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो भगवान के भजन में सहायता नहीं करता, ऐसे पिता को, ऐसे भाई को, ऐसे पति को, ऐसी कोई भी हो, उसको तत्क्षणात प्रत्याग कर दो। शास्त्रों में इसके उदाहरण है, तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया, उसने लात मारा अपने भाई को, उन्होंने कहा विभीषण जी ने, अरे सीता जी लगती हैं, राम स्वयं परब्रह्म है, इनको लेकर के उपहार के साथ में लेकर के रामचंद्र जी को समर्पण करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा नहीं, अगर हमको शिक्षा देने आए, एक लात मारकर जाओ भागो। उन्होंने उस ऐसे भाई को छोड़ करके सदा के लिए रामचंद्र जी के चरण कमलों का आश्रय लिया। तो तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने मैया को प्रत्याग कर दिया, मैया का दोष क्या, रामचंद्र जी के लिए वनवास दिया 14 वर्ष का और भरत के लिए राज्य मांगा, ये तो भरत के लिए अच्छा ही था, किंतु ऐसे माता को उन्होंने कुमाता कह करके सदा के लिए प्रत्याग किया। यहाँ तक कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में लौटे भरत जी, और उस समय में नंदीग्राम में अकेले तपस्या कर रहे थे, राज्यकाज भी चला रहे हैं, उस समय माता कैकेयी उनके पास में गई और उन्होंने क्षमा मांगा, कहा जब बेटा ये राजभवन हमारे लिए बिच्छू डंक रहे हैं, काट रहे हैं बिच्छू जैसा, हमको नहीं चाहिए ऐसा राजभवन, हम तुम्हारे पास में रह करके इस जंगल में ही मंगल समझेंगे, हमको तुम आदेश दो तुम्हारे पास में आकर के रहूं। उन्होंने कहा आप राजरानी हैं, मैया का संबंध हमारा टूट चुका है, आप राजरानी हैं, आपकी सुख की सारी व्यवस्था वहीं पर होगी, हम मैया का संबंध नहीं रहेगा। वहां से लौटी विमुख होकर के और एकदम पागल हो गई, बस मरना ही केवल बाकी था। रामचंद्र जी जब वनवास से आए, भरत जी ये कैकेयी उनसे सबसे पहले मिली, ये सबसे पहले कैकेयी के यहां मिले गए और कैकेयी से कहा, कैकेयी ने कहा जब बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भैया मांग लो, क्या चाहती हो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। मैया ने कहा बेटा एक बार हमारा बेटा हमको एक बार मां कह दे, मैं चेष्टा करूंगा। मैया चली जाने के बाद में भरत को बुलाया, भरत तो हमारा भैया है ना जी, मेरी सब बातों को मानता है तो हमें सब आपकी बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ठीक है आप मांगिए, किंतु एक बात छोड़कर, राजरानी को पुनः माता कहने के अतिरिक्त आप जो कुछ चाहेंगे, प्राण भी जो कुछ भी मैं सब कुछ दे दूंगा। तो सजय पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी, भरत जी ने ऐसे माता जी का प्रत्याग किया। कैकेयी का कोई दोष नहीं था, रामचंद्र जी ने ऐसा कराया था, सब जगत के कल्याण के लिए, किंतु शिक्षा के लिए ये दिखला रहे हैं, जैसे माता को अंत तक माता नहीं माना, जिनका प्रिय कृष्ण और राधा नहीं है, राम और सीताजी नहीं है, सजिए कोटि बैरी समय यद्यप परम से नहीं, उनका संबंध प्रत्याग करना ही भक्ति के लिए उचित है। इस भक्ति में यदि भक्ति नहीं कोई करता तो उसके लिए, यदि पति भजन करता है स्त्री नहीं करती, उसमें आधा भाग नहीं होगा। यदि पत्नी भजन करती है और पति नहीं करता तो पत्नी में उस आधा भाग अपने पति को नहीं मिलेगा। संसार के इन कामों में जो दान तपस्या और ये सब जगत के जो वर्णाश्रम धर्म के, उनमें तो आधा ले लेगी, किंतु भक्ति में जहां आत्मा का धर्म है उसमें ये बंटवारा नहीं होता, जो भक्त भजन करेगा उसी को भक्त मिलेगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे, बेटा का उसमें उत्तराधिकारी नहीं होगा। बहुत से ऐसे देखे महापुरुष हो गए, उनका बेटा भजन नहीं करता तो उत्तराधिकार में उसका घर का संपत्ति का तो मालिक बन जाएगा वो उत्तराधिकारी बिना रजिस्ट्री के ही, किंतु भक्ति में वो अधिकारी नहीं होगा। न पति में पति, न पत्नी का पति में, न पुत्र का बाप के संपत्ति में, न लड़कियों, वहां कोई हिस्सा नहीं, वहां अखंड भक्ति है, जो भजन करेगा उसी को मिलेगा। इस चीज को समझना चाहिए प्रहलाद जी के उपाख्यान, तब तो ये भागवत सुनना हुआ। इसलिए इस चीज को ठीक रखना चाहिए, यदि पति हमारा भक्त है तो हमारा सर्वस्व है, तो पति क्या कर रहा था भक्ति अखंड होती है, उसमें हिस्सा नहीं बढ़ता, हिस्सा बढ़ता है इसमें वर्णाश्रम धर्म के कामों में, दान में, दक्षिणा में, कोई और काम हो रहा है तो पति पत्नी बिना बैठे यज्ञ नहीं कर सकते, रामचंद्र भी नहीं यज्ञ कर सके सीता के बिना, उनको सीता की मूर्ति बनवानी पड़ी, इसलिए इसमें जो जरूरी है भाग ले लेगा, किंतु भक्ति में कोई भाग नहीं ले सकता, जो भजन करेगा वही। इसलिए भक्ति एक ऐसी निराली है, ये आत्मा का धर्म है, और ये सब दान पुण्य ये सब बद्ध जीवात्मा शरीर में बद्ध होने पर उसका वो धर्म है, उसमें वो भाग ले लेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को छोड़ा था, निर्भय होकर के डरे नहीं, हजार चेष्टा किया मारने के लिए, मार नहीं सका वो। अंत में वो डर गया और डर करके गुरुगृह में दे दिया संडा मर के यहां। संड माने होता है सांस, बेपरवाह, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। बैठ हारमोनियम के पास में बैठे, उनको तनिक भी कोई ज्ञान नहीं होता। खाता पीता मस्त रहता है, डोलता फिरता है इधर। बरसात के दिनों में उसके गोबर सा कोई काम नहीं होता। ऐसा सांड जो धर्म से संबंध नहीं। और अमर्क माने अंधकार, यहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो ज्ञान नहीं है। ऐसे का वो दोनों संड अमर्क जो शुक्राचार्य के बेटे थे उनको पास में पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य जी आएंगे तब इसको ज्ञान देंगे, तब अपने पिता की ये सेवा कर सकेगा। और उन्होंने बच्चों के साथ में ये कहना आरंभ कर दिया, बच्चों को बुलाया, खेलो माता जाओ हमारी बात सुनो। उन्होंने कहा कुमार आचत प्राज्ञो धर्मान भगवतान इह। कुमार काल से बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। क्यों? असुर बालकों ने पूछा जे क्यों, अभी हम खेलेंगे कूदेंगे बड़े होंगे स्कूल में जाएंगे पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग वकालत छल छदम राजनीति इत्यादि हम पढ़ लेंगे और इसके बाद में घर बनाएंगे विवाह करेंगे मस्त होंगे और इसके बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा उस समय भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा अरे यदि तुम्हारा बचपन में ही मृत्यु तुम्हारी हो जाए और बुढ़ापा आए नहीं तो फिर क्या होगा, कब मृत्यु आएगी कोई ठीक नहीं, आज है हम कल नहीं है, कोई ठीक नहीं, इसलिए आज से ही भजन करो। तो फिर हमको सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं न तत्प्रयासो कर्तव्य जता आयु व्यय परम। अरे दुख तो बिना बुलाए आ जाता है, यदि सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुमने पूर्व जन्म में सुख के लिए कर्म किया है तो भी खुदा फाड़ करके छप्पर फाड़ करके दे देगा, दुख बिना बुलाए आता है। एक बुढ़ापा नाम की सबके पास आने वाली एक बुढ़िया है, उसको कोई नहीं चाहता, केस पके हुए, मुख टेढ़े हो गए, दांत नहीं है, उसके कोई मांस तक नहीं, बड़ी विकराल भयावनी मूर्ति और सबसे चिपकेगी, ऐसा कोई नहीं जिसे वो विवाह नहीं कर लेगी केवल भक्तों को छोड़कर, जरूर सबको सताएगी ये बुढ़ापा, मरना भी सबको, जो जीवित हैं अभी जन्म लिया उनको मरना भी अवश्य है। उसी तरह से यदि सुख तुम्हारे लिए होगा तुमने कर्म की आशा किया होगा सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा, कोई नहीं चाहता है राजा बन जाता है और कोई हजार चेष्टा करता है कुछ नहीं होता, इसलिए बचपन से ही और सुख के लिए प्रयास न करके भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि बचपन में ही गुरु कर्ण करके गुरु का पदाश्रय करके उसे मंत्र इत्यादि लेकर भगवान का भक्ति आरंभ कर देना चाहिए, बिना गुरु के सेवा के नहीं हो सकता है ये। इसलिए गुरु पदाश्रय करके जितने प्रकार के विघ्न हैं उनकी सेवा से सब दूर हो जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है और भगवान के चित्त भक्ति में चित्त लग जाता है। इस तरह से उनका उपदेश देने लगे और अपने पूर्व जन्म का इतिहास बुला। इसलिए इन सब शिक्षाओं को हम लोगों को ग्रहण करके निर्भीक होकर के केवल मात्र भक्ति का ही अवलंबन करना चाहिए। तुलसी की रोज सेवा, देखने में ऐसे मालूम होता है जो कुछ नहीं, प्रतिदिन हरि नाम करना, प्रतिदिन कुछ हरि कथा सुनना, यदि अवसर नहीं मिलता है तो अपने घर में ही गीता भागवत थोड़ा सा पढ़ लेना, उसको समझने की चेष्टा करना, भगवत दर्शन करना, ये सब सहज भक्ति के रूप में। उन्होंने बतलाया था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। भगवान के धामों में जाना, मंदिरों में जाना, भगवान की कथा सुनना, निरंतर भगवान का नाम करना, विशेष तौर के कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बस इसे सबका सब कुछ हो जाएगा। भक्ति और करने की कोई जरूरत नहीं, न तपस्या न जोग न तप न भप न कुछ भी नहीं। इस तरह से भागवत को सुन करके ये सब चीजें आनी चाहिए, निर्भीकता आनी चाहिए, ऐकांतिकता। कृष्ण के और राधा जी के चरणों को छोड़ करके इस ब्रज में रह करके हम और कोई भी उपासना नहीं करें, सब उनके देवता देवी, सब उनके किंकर हैं, उनके दास और गुलाम हैं। भगवान की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जिसे वो पाते हैं भक्ति, क्यों नहीं हम उनके चरणों में राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति करें। इसलिए ब्रजवासी होकर के विशेष करके इस ब्रज में जन्म लेकर के यमुना के किनारे गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना के निकट में रह करके और किसी की आज से उपासना नहीं करेंगे। उपासना करेंगे किसकी? राधा और कृष्ण की। किंतु इस उपासना में भी राधा के तरफ में अधिक झुकाव होना चाहिए श्रीमती जी के, तब वो प्रेमा भक्ति ब्रजवास भक्ति आएगी, नहीं तो कदापि वो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी भक्ति से वो प्रसन्न नहीं होते और राधा जी के भक्ति का गंध होने पर भी उसके अधीन बन जाते हैं। ये भक्ति का एक रहस्य है। ऐसा जान करके आप लोग शुद्धा भक्ति का आचरण कीजिए, अनायासी भव सागर से तार पार करके कृष्ण की सेवा को प्राप्त करें। अभी एक बेटी आई है, बहुत सुंदर मधुर कीर्तन करेगी, आप उसको श्रवण करें जल्दी। इसके बाद में तो सब आरती होने के बाद, अभी कोई टस से मस्त नहीं होंगे।